नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दिसंबर 2022 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 12.94% घटकर 1,336.51 करोड़ रुपए पर आ गया। देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,535.28 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को दी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत कुल आय बढ़कर 5,051.17 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,713.37 करोड़ रुपए थी। अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 3,507.18 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले समान अवधि में ये आंकड़ा 2,924.30 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजकोषीय मजबूती को जारी रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरमानी ने मंगलवार को कहा कि इससे भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में फंसी हजारों करोड़ रुपए की राशि को मुक्त कराने के लिए एक योजना पर परिचर्चा पत्र लेकर आएगी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने यह जानकारी दी। इस योजना में बताया जाएगा कि अनुबंध संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कितने प्रतिशत का भुगतान करने की जरूरत होगी। शुरुआत में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग अन्य नियमों और शर्तों के अलावा अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए प्रस्तावित प्रतिशत की मात्रा पर हितधारकों से सुझाव मांगेगा। इस योजना के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित वे विवाद आएंगे जो फिलहाल मध्यस्थता या मुकदमेबाजी में फंसे हैं। हालांकि ये योजना स्वैच्छिक होगी, लेकिन ठेकेदार अनुबंध मूल्य के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को स्वीकार कर विवादों के समाधान के लिए आगे आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। वो LV प्रभाकर का स्थान लेंगे। प्रभाकर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को पूरा हो गया था। इससे पहले राजू 10 मार्च 2021 से कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। बैंक ने बयान में कहा कि राजू के पास बैंकिंग क्षेत्र के सभी खंडों का व्यापक अनुभव है। देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इस साल उत्पादन में गिरावट के बरसों से जारी रुख को पलटेगी और उसके बाद धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाएगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ONGC नई खोजों से उत्पादन शुरू करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। ONGC ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.17 करोड़ टन से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन किया था। कच्चे तेल का शोधन कर इसे पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। बीते वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का प्राकृतिक गैस उत्पादन 21.68 अरब घन मीटर रहा। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, उर्वरक विनिर्माण और वाहनों के लिए CNG के रूप में किया जाता है। ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने PTI भाषा से कहा, हम निश्चित तौर पर 2023-24 और यहां तक कि चालू वर्ष में भी तेल एवं गैस उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। आभूषण कंपनी कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर की तीसरी तिमाही में 10.34% बढ़कर 148.43 करोड़ रुपए पर पहुँच गया। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी में 134.52 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी की एकीकृत आय आलोच्य अवधि में 13.06% बढ़कर 3,884.09 करोड़ रुपए हो गई। एक साल पहले समान तिमाही में ये 3,435.39 करोड़ रुपए थी। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण रमन ने कहा, सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद शादियों के सीजन की मांग के कारण सभी बाजारों में राजस्व बढ़ा है और शोरूम में ग्राहकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बाजार नियामक सेबी ने गो डिजिट जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड के IPO के शुरुआती दस्तावेजों को नियामकीय नियमों के अनुपालन में कमी के चलते लौटा दिया है। कनाडा स्थित फेयरफॉक्स समूह समर्थित बीमा कंपनी गो डिजिट ने अगस्त 2022 में सेबी के पास IPO की मंजूरी के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा कराए थे। इस निर्गम में कंपनी ने 1,250 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी करने के साथ ही 10.94 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश का प्रस्ताव प्रस्ताव रखा था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने गो डिजिट के आईपीओ संबंधी दस्तावेज गत 30 जनवरी को लौटा दिए। ये कदम सेबी के पूंजी एवं खुलासा शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने की वजह से उठाया गया है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि वो सेबी की तरफ से मांगी गई जरूरी जानकारियों के साथ इस दस्तावेज को अद्यतन कर दोबारा जमा करेगी। मोतीलाल ओसवाल की एक इकाई ने मंगलवार को राजकोट स्थित स्वच्छता उत्पाद बनाने वाली कंपनी पैन हेल्थ केयर में अल्पांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। कंपनी के प्रवर्तक चिराग पैन ने बयान में कहा कि वर्ष 2016 में स्थापित कंपनी इस राशि का इस्तेमाल ब्रांड निर्माण और वितरण को मजबूत करने में करेगी। पैन हेल्थ केयर डायपर और सैनिटरी नैपकिन बनाती है। बयान में कहा गया है कि मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स द्वारा प्रतिबंधित कोषों ने पैन समूह की कंपनी में निवेश किया है। पैन समूह सीमेंट, कपास, इस्पात और कृषि व्यापार क्षेत्र में काम करता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।